अब इसके बाद अगली आयत में एक बात है, थोड़ा सा इशारा करती हूँ पहले। देखिए, आप किसी इंसान से पूछें, रेडी लगाने वाले, बैगर, साइकिल पे, स्कूटर पे, पुरानी सी गाड़ी, यानी नीचे से शुरू करें, दौलत की बात कर रही हूँ, दौलत के एतबार से कमज़ोर शख्स से लेकर आप मिलियनेरियंस और उससे ऊपर वालों से पूछें, सुनाओ भाई क्या चाहते हो और चाहिए। आप देखेंगे नीचे से हर बंदा एक कहेगा, हाँ मैं चाहता हूँ मैं दौलतमंद हूँ। और हमारी अक्ल भी यही कहती है कि अल्लाह ने कुछ को अमीर और कुछ को गरीब क्यों बनाया, ऐसे ही है ना। यहाँ इस आयत में उसका जवाब है कि सारे अमीर क्यों ना कर दिए गए, सब सेहतमंद क्यों नहीं है, सब खूबसूरत क्यों नहीं है, सब के बच्चे फरमाबरदार क्यों नहीं है। तो कायनात का राज समझिएगा, बहुत अहम आयत है। वलौ बसत अल्लाहु रिज़्क़ लिबादिही लबगौ फिल अर्ध, अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुला रिस्क दे देता तो वो ज़मीन में सरकशी का तूफ़ान बरपा कर देते, मगर वो एक हिसाब से जितना चाहता है नाजिल करता है, यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और इन पर निगाह रखता है। वही है जो लोगों के मायूस होने के बाद मीह बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, और वही काबिले तारीफ़ वली है। उसकी निशानियों में से है कि वो ज़मीनों आसमान की पैदाइश और ये जानदार मखलूकात जो इसने दोनों जगह फैला रखी हैं, वो जब चाहे इनको इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि वो इस चीज़ पे कादिर है। क्या समझ आई बात? देखिए, अगर सब अमीर होते तो वो काम जो गरीब गुरबा कर लेते हैं बेचारे पैसे के लिए, वो कौन करता? बात वाजे, हमारी मासियाँ चंद हज़ार रुपये पूरा महीना हमारे घर काम करती हैं, अगर वो भी होती करोड़पति तो आपके बर्तन कौन धोता? वो कहते ना कि तू भी रानी मैं भी रानी, तो कौन भरेगा पानी? मैं क्यों करूँ, तुम क्यों करो, मैं क्यों करूँ, मैं किसी से काम हूँ, दुनिया का काम नहीं चलता। तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाए इसलिए कि चले। कहते हैं, हदीस आती है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया और उनकी ज़ुर्रियत दिखाई, तो उसमें आदम ने देखा कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, यही तकाबुल देखा। तो अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला ये क्या, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे एक जैसे हों। तो फरमाया कि इसलिए कि जिनको ज़्यादा दिया है वो शुक्र करें और जन्नत पाएँ, और जिनको कम दिया है वो कम पे सब्र करें और जन्नत पाएँ, और ज़्यादा वाले कम वालों को देखकर शुक्र करेंगे और कम वाले ज़्यादा वालों को देखकर सब्र करेंगे। ये अल्लाह की ज़ात है जो इस तरीके से खूबसूरत मामले करती है। इसलिए मैं और आप अल्लाह ताला को मशवरे नहीं दे सकते कि क्या हो। इस निज़ाम को आज के दौर में क्या कहते हैं? कम्युनिज्म। आप कहते हैं कि रशिया में ये निज़ाम चला था। आपके शौहर कमाते हैं महीने के 25,000 करोन, आपके कमाते हैं 5,000 करोन, आपके कमाते हैं 10,000 करोन। क्या कहते थे? ये बड़ा सा एक डब्बा रखा है गवर्नमेंट का, आप 25 इसमें डाले, पूरे का पूरा 100। अब 1, 2, 3, 4 लोग हैं ना, अब वो सारे जमा किए, 25 जमा फलां जमा जमा, उसके बाद आप चारों को बराबर तकसीम कर दें। ये है क्या मने से? आप मुझे बताएं, वो 25,000 जिसने कमाए वो मेहनत करेगा, और जिसने 5 कमाए वो मौज करेगा? ये जुल्म है। दुनिया में तफावत रहा, किसी को अमीर देखा, किसी को गरीब। अबू बकर सिद्दीक बहुत अमीर थे, हालांकि सिद्दीक थे, साबिकून अलवलून है, नबी के हबीब है। कभी आप इस बात पे सोचें, बल्कि आज अभी दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि अबू बकर सिद्दीक इतने अमीर भी थे, इसके बावजूद हर नेकी के काम में सबसे आगे। तो अल्लाह दीन की और दुनिया की दौलत एक जगह जमा कर सकता है। ये जो आज कॉन्सेप्ट है ना कि अमीर गरीब जो है ना वो बड़ा नेक होगा और अमीर तो सारे आग में जाएंगे, ये भी एक किस्म की ऐसी सोच है जो मैंने अभी आपको पीछे मिसाल दी है। अल्लाह जिसको चाहे दुनिया की भी दौलत दे दे और साथ दीन की भी दे। दुनिया की दौलत, ये देखिए कि अबू बकर की दौलत का इजहार कहाँ था? बड़े से घर या ऊँची गाड़ी या अपने ही बच्चों की शादियों के नाम पर हज़ारों लाखों? नहीं, हर मौके पे दीन की मदद के लिए अबू बकर का माल निकलता था। तो खूब कमाएं आपके शौहर, उनको अप्रिशिएट करें, रिस्क हलाल कमाने पे, मेहनत करने पे उनको माइल कीजिए, लेकिन उस माल में से ज़रूरियात और अपने लिए जो अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो मखलूक खुदा की खिदमत के लिए हैं। ये दीन का कॉन्सेप्ट है, वरना अगर अपना कमाया हुआ सिर्फ सारा अपनी ज़ात पे ही लगाना होता तो फिर आप देखिए कि एक बंदे को इतनी तो ज़रूरत नहीं होती, फिर तो बस खाया पिया और मौज किया। आप गोरों के बारे में कहते हैं जितना कमाते हैं खा जाते हैं, जो वीकडेज में कमाते हैं वो एक ही वीकेंड पर कर देते हैं। देखा जाए, मैं नहीं उसको सपोर्ट कर रही इस वक्त, लेकिन देखा जाए तो ये सोच उससे तो बेहतर है। जो हमारी है, कि जिंदगी भर सांप बन के बैठे रहेंगे अपनी दौलत पे और बाद में झगड़े पड़ते हैं विरासत के नाम पे। अपनी जिंदगी में अपनी चीज़ें बांट जाएं, कोई बाद में इसके ऊपर आपको अच्छा कहेगा ना तो 10 बुरा कहेंगे। जिसको मिलेगा वो खुश होगा, जिसको नहीं मिलेगा वो रोएगा। सगी औलादें एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। आपने देखा होगा भाई बहनों के दुश्मन बनते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए इन सारी चीज़ों को समझने वाला बना दे। फिर उसके बाद फरमाया, आगे देखते हैं आयत 30, वमा साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो मुसीबत भी आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आती है। 3 सेकेंड इस पर गौर करें, कोई तकलीफ़ जो आपके ऊपर रिसेंटली आई हो उसको सोचें और फिर सोचें ये मेरे किस गुनाह की सज़ा। तो दिल खुलेगा। हम क्या कहते हैं, नज़र लग गई। हम कहते हैं हसद कर दिया फलाने, फलाने ने बदफाली कर दी, फलाने पहले ही कह दिया था, फलां फलां को छोड़ दीजिए, मेरी आपकी किस्मत को बिगाड़ने में दूसरों से ज़्यादा हमारा अपना हिस्सा है। तो आज के बाद अपना गोल बनाए, जब छोटे से छोटा काम ख़राब हो, बच्चा रोए, बच्चा बात नहीं मान रहा, आपका काम करते, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, चलते थे एकदम गाड़ी रुक गई, रे इसको क्या हो गया, उसको क्या हो गया, उस वक्त इस आयत को सोचें। करेंगे याद इस आयत को, जब कोई मुश्किल आए ये मेरे ऊपर क्यों आई, आज क्यों आई, अब क्यों आई। और इसको फुरकान कहते हैं, ये अल्लाह से मांगने वाला होता है। पीछे आप पढ़ चुके हैं सूरह स्वात में हज़रत दाऊद का किस्सा, दूसरों का किस्सा सुनकर अपना अमल याद आ गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं बहुत से कसूरों से तुम वैसे ही दरगुजर कर जाते हैं, ये भी अल्लाह की शान है, वरना तो हम बिस्तरों पे पड़े होते। कोई शख्स सीधा ना खड़ा दिखता इस कायनात में अगर हर गुनाह पे अल्लाह ताला बंदे को पकड़ दे। इसके साथ एक साइंसी फिगर मुझे याद आ गया, गो के आउट ऑफ टेक्स्ट है लेकिन बात समझने की। आपको कहते हैं कि आसमान से हर वक्त बलाएँ टल रही, एक तो हम कहते हैं ना बलाएँ उतरती हैं, साइंस इसको क्या कहती है, इसके कुछ नाम हैं, बस आप आसान से लफ्ज़ों में समझें कि रेडिएशन हैं, ये ऊपर से हर वक्त ना शुआएँ गिरती हैं। ये जब सूरज की रोशनी में से निकलें या आसमानों से गिरें, अगर एज इट इज़ ये आसमान पे आ जाए ना ज़मीन पे, तो पूरी दुनिया में इस वक्त आग लगी हो। अल्लाह ताला ने ये बीच में जो लहरें रखी हुई हैं, ओजोन लहर है, फिर 7 हेवन्स है, एक स्काई, ये दूसरे, एक ऊपर से जो ये शुआएँ आती हैं ना, वो इनको अल्लाह ताला इनके असर को ख़त्म करता है। छन छन के ये सूरज की रोशनी आती है तो हम इससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर अपनी असल गर्मी के साथ सूरज हमारे पास आ जाए, ज़मीन जल के राख हो जाए। जिस रब ने ये बीच में लहरें रखी हैं कि तुम ज़मीन पे इत्मीनान से रहो, वही आपके मेरे गुनाहों को भी झाड़ता रहता है। हमारे जिस्म पे इतने बाल नहीं हैं जितने गुनाह, हमारे जिस्म पे इतने मुसाम नहीं हैं जितने हमारे गुनाह। 24 घंटों में हर घंटे को आप जमा करके उसके सेकेंड ले लें, इससे भी ज़्यादा हमारे गुनाह उस 1 घंटे में। ये उसकी रहमत है कि हम बचे हुए। या फ़ुअन कसीर, दुआ करें अल्लाह मेरे जो बाकी हैं उसको भी माफ़ कर दे, मुझे ना पकड़। अच्छा, किसके कसूरों को माँ माफ़ कर देती है? कसूर होता है पर है बड़ा प्यारा बच्चा, एटिकेटेड, झुका हुआ, फिर कभी दोस्तों में बात कर देता है या दोस्तों में जाके कोई गलत हरकत करता है, माँ कहती है कि बात वैसे नहीं मानी इसने मेरी, लेकिन मेरे साथ बड़ा प्यारा है, बोलता बड़ा अच्छा है, मेरे से कभी बदतमीजी नहीं करता, और गलती होती आके फौरन मुझे कह देता है मैंने किया। और इसके बरक्स एक बच्चा इतने गलत काम ना करे लेकिन माँ के आगे बदतमीजी से बोले, चिल्लाए, चीखे, माँ बुलाए तो आए ना, तो माँ को माँ कहेगी, और चाहे 4 अच्छे भी काम कर दे, माएँ कहती हैं मेरा बच्चा काम बड़े करता है लेकिन ज़ुबान का तेज़ है, गुस्से का तेज़ है। आप और मैं अपने गुनाहों पर माफ़ी का कलम फिरवाना चाहते हैं ना, उसके 2 रास्ते हैं। अपना एटीट्यूड ठीक कर लें, अल्लाह के भी साथ बंदों के, और दूसरा सदका। हदीस में आता है कि इंसान के ऊपर एक बला टलनी होती है, आसमान से एक मुसीबत एक तकलीफ आई होती है, चल पड़ी है, इधर से कोई सदका है। आपको नहीं मुझे पता कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आनी थी शाम को, हमने ऐसे अपने शौक से कहा सदका करते हैं, वो जब सदका किया ना ये सदका ऊपर गया, वो मुसीबत है का बीच आसमान में इन दोनों की लड़ाई होती है। अगर वो बला स्ट्रांग है, सदका कमज़ोर है, यानी नीयत अच्छी नहीं या कुछ भी था, तो बला टल नीचे आ जाएगी। लेकिन ये सदका स्ट्रांग है, चाहे एक पैनी है लेकिन नीयत बड़ी अच्छी है, तो ये उसको ले जाके आखिर पीछे करके उसको वापस जाना पड़ेगा। तो ये अल्लाह ताला से अपने आप को बचाने वाली चीज़ें, और उन सब का अल्लाह ताला ने हमें तरीका सिखा दिया, और ये हिकमतें भी आपको कुरान पढ़ कर आती हैं, वरना इसके अलावा ये बातें समझ भी नहीं आती। تم زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ بحری جہاز پہ بیٹھے؟ دیکھا تو بیسوں بار ہوگا نا، کیسے پہاڑ کا پہاڑ کھڑا رہتا ہے وہاں۔ ایک چھوٹی سی سوئی، یعنی اگر میں یہ بک مارک بھی ڈالوں گی نا، کچھ اتنی معمولی وزن کی چیز بھی ڈوب جاتی ہے۔ اتنا بڑا جہاز کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے نہیں حکم دیا اس کو، اللہ نے کہا ہے اے جہاز تو نے اوپر ہی رہنا ہے، کھڑا ہو گیا۔ لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اس کو پھر حکم دوسرا دے دیتا ہے۔ فرمایا اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ یہ کون سی ہوائیں ہیں جو سمندروں میں کشتیوں کو اور جہازوں کو چلاتی ہیں؟ آپ میں سے بہت سب کو پتہ ہوگا کہ سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں نا، یہ ہوا کے زور پہ چلتے ہیں۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو یہ نہیں چل سکتے کھڑا ہو جائے۔ بلکہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہوا اسی رخ پہ جاتی ہے جس رخ پہ آپ نے جانا ہوتا ہے، تو وہ جہاز کے جو انجن ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں۔ ایک سفر ہم نے ایسا کیا، جب جا رہے تھے تو ٹھیک تھا، خوفناک تو تھا لیکن اتنا نہیں تھا، لیکن رات کو وہ جہاز یوں کانپ رہا تھا، ایسے ڈول رہا تھا، پوری رات ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی گئے کہ ابھی گئے۔ جب بعد میں پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ رات کے وقت وہ جہاز کے انجن بند کر دیتے ہیں، اور ہوا جو چل رہی تھی نا اسی کے رخ پہ جہاز جا رہا تھا۔ پھر سمجھے کہ اتنے جھٹکے کیوں لگتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہوا رک جائے تو کیا ہوگا؟ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو انتہا درجے کا صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ کیا نشانی ہے؟ نفس کو قابو میں رکھنے والے ہر حالات میں سہ جاتے ہیں، گرم بھی سہ جاتے ہیں، نرم بھی سہ جاتے ہیں۔ اچھے برے حالات میں بندگی کے رویوں پہ قدم ثابت قدم رہنا، یہ اسی بندے کو نصیب ہوگا جو اپنے دل سے اللہ کو مانتا ہے، ورنہ اس کے برعکس کچھ لوگ تو کچھ اور ہے۔ فرمایا یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو ڈبو دے۔ کسینو، کروز، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ اکثر سمندروں کے اندر۔ کبھی آپ بڑے سے جہاز میں سفر کریں، مجھے پتہ نہیں تھا جب ہم لوگوں نے ایک سفر کیا، اس وقت اگر پتہ ہوتا آئی ایم شیور نہ میں نے جانا تھا نہ میرے ہسبینڈ نے اس میں، لیکن کسی کے کہنے پہ ایک موقع پہ ہم نے ٹریول کیا، پورا اوور نائٹ سفر تھا۔ تو جب گھومتے ہوئے سب چیزوں کو ایکسائٹیڈلی دیکھ رہے تھے، ایک پورا فلور کسینو، شراب اور جو بھی رات کو ان کی مستی ہیں اور نائٹ کلب اور کیا کچھ، جہاز ڈوب سکتا تھا۔ پوری رات یہی سوچتے رہ گئے کہ آج گئے اور ان کے ساتھ ہم بھی ڈوبیں گے۔ ہاں حدیث میں ہے کہ جب بندہ ایسی جگہ مر جائے تو پھر اپنے اعمال یا اپنی نیتوں پہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ یاد رکھیے اللہ کی پکڑ کو بلانے والی بات ہے جب اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے دیے ہوئے خوشیوں کے موقع پہ انسان ایسی مستیاں کر دیں۔ فرمائے اس وقت ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، تو مستی میں نہ آؤ۔ ہائی لائٹ کیجیے گا آیت 36 کو، فما اوتی تم ان شئین فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی بھی ہے۔ کیا مجھے آپ کو اپنی موت کا دن پتہ ہے؟ تھوڑا سا سوچیں کیسا دن ہوگا، کہاں مروں گی میں، گرمیاں ہوں گی کہ سردیاں، اپنے ملک میں مروں گی کہ پردیس میں، نیکی کرتے ہوئے مروں گی یا نفس کی خواہش پوری کرتے ہوئے۔ سوچا کریں مجھے کہاں دفنایا جائے گا، جس کے رستے میں بھی قبرستان آئے نا سوچے ایک لمحے کہ میں اس قبرستان میں آؤں گی سونر اور لیٹر، یا شاید میں کسی اور جگہ جا کے مروں۔ اور آپ کو پتا کہ ہمارے مرنے کی جگہ بھی اپوائنٹڈ ہے۔ بندے کو جہاں کی مٹی سے پکڑا ہوتا ہے نا، روایت ہے، مجھے اس وقت اس کی دلیل نہیں یاد لیکن بہت پہلے سے پڑھی ہوئی چیزیں، کہ جب جس جگہ سے اللہ نے مٹی لے کر آدم کو بنایا تھا نا، وہیں کی مٹی میں جا کے انسان دفن ہوتا ہے۔ اللہ نوز دی بیسٹ۔ بس اپنی سوچ کے لیے سوچ لیں، تھوڑا سا تو ایسی باتیں سوچیں۔ لوگ کہتے نہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور بچوں کے ساتھ تو بالکل نہ کرو، بچوں کا کانفیڈنس لوز ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتے کہ بیٹا آپ بھی فوت ہو سکتے ہیں، ماما بھی فوت ہو سکتی ہیں، ماما فوت ہو گئیں تو آپ کیا کریں گے، اور وہ فوت ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اتنا نان ریئلسٹک اپ برنگنگ سٹائل ہے آج بعض لوگوں کا، کیسے لگتا ہے کہ جانا ہی نہیں ہے اور جینے کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں، اور جیتے جیتے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ ساتھ رکھے، بعض بچے کو موت والے گھر میں نہیں لے کے جاتے، कहते हैं डर जाएगा, ये खौफ है। बच्चे को नहीं डरते, उनको वो खेल रहे होते हैं, मैयत साथ पड़ी होती वो खेल रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो हमेशा रियलिस्टिक वे पे जिए, अपना भी स्टाइल जीने का रखें। 1 महीने की चीज़ें खरीद लूँ, क्या पता उससे पहले मरना है। ये जुमला बोले, ये भी ले लो, वो भी ले लो, नहीं बेटा अभी तो बहुत कुछ है, पता नहीं हमने इतना जीना भी है कि नहीं। ये खामोश किस्म की तबलीग है जो हम अपने बच्चों के जहनों से शुरू करके बड़े होने पर ला सकते हैं। 1 महीना बाद किसको पता कौन जीता है 1 माह तक। ये सोच मुझे आपको इनायतों से मिल रही है, और तवक्कुल अल्लाह पे। फिर एक और ख़ूबी ऐसे लोगों की, वल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइर अल-इस्मि वल-फवाहिश, और ऐसे लोग हैं जो अपने रब पर भरोसा करते हैं और बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं, और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करते हैं, और जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, और अपने मामलात आपस में मशवरे से करते हैं, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो रिस्क इनको दिया जाता है इसमें से खर्च करते हैं, और जब इन पर ज़्यादती हो जाए, देखिए ज़रा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, जब कोई इन पर ज़्यादती कर दे तो वो उनको मुआफ़ कर देते हैं, मुकाबला करते हैं। कैसे? चेक करते हैं ज़्यादती करने वाले ने क्यों की, सोच क्या थी, इरादा क्या था। फिर अगर बदला देना पड़े, वह जजा सैयतम सैयतो मिसलुहा, बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। हाँ मगर ये तो एक आम लोगों की बात थी, फ़मन अफ़ा व असलह फ़ज्रुहु अलल्लाह, जो कोई माफ़ करे और इस्लाह करे तो इसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे है, और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। अभी भी लिस्ट आगे चल रही है तो पूरा पढ़ के इस पे बात करते हैं। फरमाया जो कोई जुल्म होने के बाद बदला लें तो इनको मलामत नहीं की जा सकती। मलामत के मुस्तक तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक ज़्यादतियाँ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अलबत्त जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये तो बड़ी बड़ी उलूल अलमी के कामों में से। ये किरदार पूरा हुआ, बहुत अरसे के बाद आपने सुना है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सूरत फुरकान में इबादुर्रहमान का तस्करा था ना, उसके बाद अब यहाँ किरदार साजी की बात है। अल्लाह सुब्हानहु तआला हमारी करेक्टर बिल्डिंग करते हैं। पीछे बात शुरू हुई थी फमाउती तुमसे, जो तुमको दिया गया वो दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। थोड़ा सा सोचिए, क्या दिया गया आपको, मुझे घर, माल, बच्चे, गाड़ी, शौहर, जेवर, ज्वेलरी, प्लॉट्स, बैंक बैलेंस, ओहदा, रुतबे, जॉब, ये सब जिनकी बिना पर अकड़ते हो कह दीजिए ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। थोड़े दिन में ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। कभी आपने लोगों को देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट पे किसी मुल्क में आते हैं, जू ही जॉब ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, वीज़ा ख़त्म, जाइए आपका तो वीज़ा ही कॉन्ट्रैक्ट पे था, आपको पूरा पक्का वीज़ा नहीं मिल सकता, उस दिन अकड़ ख़त्म होती है। तो अपने आप से पूछिए कि अल्लाह तू मुझे बता मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब तक है और कहाँ तक चलूँगी। उसके बाद देखिए वल्लज़ीना यजतनिबूल कबाइर से बात शुरू होती है, आयत 37 से ये मज़मून चल रहा है। जन्नत में जाने के लिए कबीरा गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। तो आप कहते हैं फिर बट से बट सगीरा, समझदार भी तुम बहुत है ना। कबीरा को छोड़ने वाला सगीरा की तरफ कभी मुँह नहीं ले करेगा। हदीस में आता है हज़रत सोबान से रिवायत है, क़्यामत के दिन कुछ लोग तहामा पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है उसका जिक्र है, तहामा पहाड़ जैसी नेकियां लेकर आएंगे, और सफ़ेद रंग का ये पहाड़ है, यानी चमकती भी इनकी सफ़ेद नेकियां होंगी, मगर वो गुबार बना के उड़ा दी जाएंगी। पूछा जाएगा क्यों, कहा लोगों में बड़े अच्छे काम करते थे, अल्लाह हम सबको बचाए ऐसी शोहरत से जो रात की तन्हाइयों में हराम काम कर लेते थे। हवाम मम्बस्सा बन जाएंगी, हमा मंसूरा बना देगा। आज कहते हैं ये बच्चों के देखने की नहीं है, अडल्ट्स ओनली, हस्बैंड वाइफ ओनली, नथिंग इज़ लाइक दिस। रात की तन्हाइयों में भी फोहश से बचिए। आज इस फहाशी को आम करने में तो सबसे बड़ा हाथ बिलबोर्ड्स का है, अपने मुल्कों में देख लीजिए या गैरों में देखें। नाइट क्लब में तो वो जाएगा ना देखने जिसने जाना है, जिसका मिजाज बिगड़ गया। ये सड़कों पर लगे हुए बोर्ड्स कौन देखता है, हमारे आपके बच्चे। और समर आएगा तो मुसीबत पड़ जाएगी, सड़कों पे, रोड्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे निकलना मुहाल हो जाएगा। क्या करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारी नज़रों की हिफाजत फरमा। फिर आप देखिए वजह ढूंढें, बेइल्मी की वजह से कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको इल्म दें, और अगर कोई स्टबन है तो उसको अल्लाह का खौफ दिलाएं। और अगर ऐसे ऐसे बिलबोर्ड्स जिसमें कपड़ पता ही नहीं चलता ये मशहूरी है किस चीज़ की, यही लगता है हर जगह औरत ही बिक रही है, उसको एक्सपोज किया गया तो उसको हटाया जाए। फिर इसके बाद आप देखिए कि ये बात करके कि अपने आप को दूसरों के रवैयों का मुकल्लफ नहीं करते, फला अच्छा करेगा तो हम अच्छा करेंगे, बुरा करेगा तो बुरा करेंगे, नहीं, सारे जुमले को देख लीजिए, या माफ़ कर दो, लोग आपसे अच्छा करें या बुरा करें, और आपने ज़िंदगी में आज तक इतनी टेस्टी चीज़ नहीं चखी होगी, ये मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, जो उस शख्स को माफ़ करके जिसको माफ़ करने को दिल नहीं चाह रहा, उसको देकर जिसको देने को दिल नहीं चाहता, उससे जाके मिलकर जिसको मिलने को दिल नहीं करता, ये कैफियत जो आपको मज़ा और लज़्ज़त देती है, क्या वो आम का मज़ा होगा और क्या वो आपके मनपसंद खानों का मज़ा होगा? एक दफ़ा ये आपको, जिसको कहते हैं ना, लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन एक दफ़ा आपको ये चस्का लग जाए तो आपको पता क्या दिल करेगा कि लोग मुझे सताएं, लोग मुझे दुख दें, लोग मेरी गीबत करें, लोग मेरी लैग पुलिंग करें, लोग मेरे खिलाफ़ बातें करें, लोग मुझे सदमा दें, लोग मेरे बच्चों को तकलीफ़ दें, लोग मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को, मेरे शौहर को, किसी को तकलीफ़ दें, और मैं उन्हें कहूँ जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ किया, दिल खुलता तब है। दिल में जब बुग़्ज़ और इनाद और हसद और कीने और ये सारे नेगेटिव जज्बे होते हैं ना, जिसका यहाँ जिक्र है, तो फिर उसमें कुरान नहीं आता। कोई एक मेहमान आपके घर आ जाए ना, आप कहते हैं इसके बैठने की जगह तो ठीक कर लो, ये दिल अल्लाह की मोहब्बत की जगह है, यहाँ बैठे बैठे इन खूबसूरत घड़ियों में माफ़ कर दें लोगों को, एडवांस माफ़ी, जिसने कहा, जिसने सताया, जिसने दुख दिया उसको भी माफ़ किया, और जो माजी आज कर रहा है उसको भी, और जो मुझे फ्यूचर में भी सताएगा, दुख देगा, मैं उसको माफ़ करती हूँ, फिर गुस्सा भी चला जाएगा। ये जो हमारे अंदर गुस्सा है ना, ये रिएक्शन है, हम माफ़ नहीं करते और बदला ले नहीं सकते, अब वो होता एक पे है, निकालते सब पे। अल्लाह के नबी ने फरमाया गुस्सा ना करो, तुम्हारे लिए जन्नत है, यानी गुस्सा जो नहीं करते उनको जन्नत मिलेगी। आयत 7, हदीस है 7374 जामे सगीर की, इब्ने अमर से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के गज़ब से मुझे कौन सी चीज़ बचा सकती है कि अल्लाह मुझ पर नाराज़ ना हो, मुझ पर गज़बनाक ना हो, तो आपने फरमाया गुस्सा ना किया करो। मुस्नद अहमद की रिवायत है 6635 नंबर की। तो अपने अंदर हिल्म लाना है। मुझे किसी ने, किसी की एक तारीफ़ बड़ी प्यारी लगी, आपको भी शेयरिंग में कहीं आई होगी, किसी ने पूछा कि ये गुस्सा क्या होता है, तो इसको जेम बना लें इस बारे का, कहा दूसरे की गलती की सज़ा खुद को दे, सच के नहीं, गलती कोई करता है, सज़ा आप खुद को देते कैसे, जड़ के कुल के कुड़ के। फिर सही मुस्लिम की रिवायत है 637 नंबर की, फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया, बस एक दूसरे पर जुल्म ना करो, बदला लेना चाहे ले लें, दिल ठंडा करना कर लें, लेकिन जुल्म नहीं कर सकते। इसी तरह बुखारी की रिवायत है 2447 नंबर, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में होगा। कभी ज़िंदगी में आपको कभी अंधेरी जगह से गुजरना पड़े, अंधेरा होना खौफ आने लगता है, बिजली चली जाए, टटोल रहे हैं, पाँव में चीज़ें आ रही हैं, ठोकरें लग रही, मोमबत्ती ढूंढ रहे, माचिस ढूंढ रहे, दिल घबराता है, क़्यामत के दिन पुल सरात अंधेरों में है, सूरज चांद तो होंगे ही नहीं, और आपको पता है कि क़्यामत का दिन भी अंधेरों में है, टाक, जहन्नम तो है ही अंधेरों की जगह। आपने फरमाया मेरी उम्मत के दो किस्म के लोगों को मेरी सिफारिश नहीं पहुंचेगी, नंबर एक इंतहाई जालिम हुक्मरान, और गलूब करते हुए दायरा इस्लाम से निकलने वाले लोग। ये सिलसिला सहीहा की रिवायत है 470। तो हर मामले में बी मॉडरेटेड, बदले ना लें, अच्छे रहें, नरम नरम रहें, लोगों को कॉर्नर दें, लोगों को समझाएं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। अब आगे आपको मुझे क़यामत के मैदान में लेके जाया जा रहा है कि देखो ये कब तक होगा। इन्नमस सबील वलल्लज़ीन यस्लिमूनन्नास वयबगून फिल अर्दी बगैरिल हक, मलामत के मुस्तक तो वो लोग हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और नाहक ज़मीन में ज़्यादतियाँ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, अलबत्ता जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये तो बड़ी उलुल अल्मी के कामों में से है। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, और जिसके ऊपर, जिस शख्स को अल्लाह ही गुमराही में फेंक दें, इसका कोई संभालने वाला अल्लाह के बाद नहीं है। अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसा ना करे। वह तरस ज़ालिमीन अलमरावलसाब, और काश तुम देखो उस वक्त जब जालिम अज़ाब को देखेंगे तो कहेंगे अब पलटने की कोई सबील है, और तुम देखो कि जब जहन्नुम के सामने लाए जाएंगे तो जिल्लत के मारे झुके जा रहे होंगे, इसको नज़र बचा बचा कर कनखियों से देख रहे होंगे। कैसे? खौफ की वजह से। किसी चीज़ से बहुत खौफ आए ना तो बंदा आंखें बंद कर लेता है, फिर थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के देखता है कि अब अंदर कुछ है। कभी किसी का कोई ऑपरेशन हुआ हो, या आप कभी किसी टेस्ट के लिए किसी बहुत भारी मशीन में से गुजरे हो, तो उसको जहन में लाइए, कनखियों से। अभी पता नहीं, इंजेक्शन ही सोच लें, बाद लोग इंजेक्शन को देख के आंखें बंद कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा देखते हैं अभी लगा क्यों नहीं, अभी डॉक्टर ने हाथ क्यों नहीं लगाया। जहन्नुम में जाकर भी लोग कनखियों से देखेंगे और जिल्लत रुसवाई। हाँ, उस वक्त जो लोग ईमान लाए थे वो कहेंगे, वाकई असल जियाकार तो वही हैं, बैंकरप्ट तो वही हैं, जिन्होंने आज क़यामत के रोज़ अपने आप को और अपने मुतल्लकीन को खसारे में डाल दिया। खबरदार रहो, जालिम लोग मुस्तकिल अजाब में होंगे और इनके कोई हामियों मददगार दोस्त ना होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में इनकी मदद को आए। जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दे, इसके लिए बचाओ की कोई सबील नहीं। बार बार आ रहा है, लोगों पे नजरें ना डालो। अब ये बात जो कहती कि भाई जिन्होंने अपने घर वालों को भी साथ आग में डाल दिया, ये कौन है? चलिए मुहासबा करते हैं। क्या मैं तो नहीं हूँ जिन्होंने जिसने अपने शौहर को गुनाह पे मजबूर किया हुआ है? मैं तो वो माँ नहीं हूँ जो अपने बच्चे को ज़बरदस्ती मजबूर करती हूँ बीवी को तलाक दो। और मैं तो वो बहन नहीं हूँ जो अपने आप को ऐसे रूप में बाहर ले जाती हूँ कि मेरे भाई की गैरत पे हाथ पड़ता है। इसलिए ज़रूरत है इस बात की, अपने साथ दूसरों की भी फिक्र करें। बहुत सारे लोग दूसरों के भी जहन्नुम में ले जाए जाने का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे महफूज रखे। करो क्या? बड़ी प्यारी आयत है। अब सूरत का एंडिंग पार्ट शुरू हो रहा है। इस्तजीबू लि रब्बिकुम मिन क़ब्ली याती यौमुल्ला मरद्दलहू मिन अल्लाह। कबूल कर लो, मान लो, जिद छोड़ दो ना, डोंट बी स्टबन, ठीक ना बनो। क्या हो गया तुमको? मान लो ना अपने रब की बात। क्या बात है आपके मेरे रब की, जो पिछले 24 बारों में पढ़ चुके हैं, जिसको कातल कुरान हयाती। अल्लाह कहते मान लो ना, नहीं मानते तो फिर एक ड्रावा। कबल इसके कि वो दिन आए जिसके टलने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं, इसलिए उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह ना होगी और ना कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला होगा। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो नबी, हमने आपको इन पर निगेबान बनाकर तो नहीं भेजा, मतलब आप इनके पीछे ना पड़े, इनको इनके हाल पे छोड़ दें। आप पर तो सिर्फ बात पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इंसान का हाल यह है कि जब हम इसे अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो ये इस पर भूल जाता है, और अगर इसके अपने हाथों का किया धरा किसी मुसीबत की शक्ल में इस पर उलट पड़ता है तो सख्त नाशुक्रा बन जाता है। फिर क्या कहते हैं? फ़लाँ की नज़र लग गई, फ़लाँ ने मेरी जॉब ख़त्म करा दी, फ़लाँ ने मेरे कपड़ों को नज़र लगा दी, बड़ा घूर घूर के देख रही थी, बड़ा उसने ऐसे झूम झूम के देखा। नहीं, मानिए कि मेरे ऊपर है। तीसरा मुकाम है सूरत में, अपने गुनाहों की जिम्मेदारी खुद भुगतो, अपने पे आने वाली मुश्किलात की वजह खुद को गर्दानो, ना कि दूसरों को। लिल्लाहि मुल्कु समावाती वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही। जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियाँ देता है। आप में से किसकी सिर्फ बेटियाँ हैं? तो ये आपका जिक्र है। जिसे चाहता है लड़के देता है, किसके सिर्फ बेटे हैं? तो ये आपका जिक्र है। जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिलाकर देता है, वो कौन है आप में से? माशाल्लाह, आप सबका जिक्र है। और जिसे चाहता है बांझ कर देता है, अगर कोई ऐसा है तो ये उसका जिक्र है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कादिर है। क्या जानता है? कि तलब होगी बेटे वालों को बेटी की, बेटी वालों को बेटे की, और जिनको कुछ नहीं दिया उनको दोनों की, और जिनको दोनों दिया उनको अब कुछ ना हो। ये बड़ी अजीब तलब है। वो कहते हैं ना कि एक शख्स था तो उसे अपने बच्चों के नाम रखे थे, और जो भी था नाम के आगे इलाही इलाही, अच्छा नाम है, बहुत प्यारा, शकूर इलाही सबूर इलाही जो भी है। तो उसका फिर 11वां बेटा हो गया, तो कहा इसका क्या नाम रखूँ? कहा बस कर इलाही है। तो जो औलाद अल्लाह दे उसको क्यों मना करे इंसान? लेकिन आप याद रखें कि अल्लाह ने यहाँ बता दिया कि मुझे पता है किसको बेटे दूँ किसको बेटी। तलब किसकी होती है? सबका क्या दिल करता है? बेटा। हाँ, 4 बेटों के बाद कोई एक बेटी टेस्ट चेंज करने के लिए। तो वो जो 4 बेटे 18 साल के हो गए, तो उनमें से एक को तो लड़की मिल जाएगी किसी की, तो 3 की शादियाँ किससे होंगी? अगर अल्लाह मुझे आपको पूछ के औलादे देता ना, तो आधे से लोग तो कुमारे बैठे रहते और दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। हमारी एक साथी थी तो वो कहती थी कि मेरे अब्बा ये आयत पढ़ के कहते थे ये मेरा जिक्र है, क्यों? क्योंकि उनमें से एक बेटी के सिर्फ बेटे थे, दूसरी बेटी के सिर्फ बेटियां थी, तीसरे के सब थे, चौथी का कुछ नहीं था। कहती मेरे अब्बा कहते हैं अल्लाह ने ये मेरा जिक्र किया, इसमें भी खूबसूरती है। और अच्छा ये कितनी मज़े की बात है कि अल्लाह पहले हमसे ना पूछ ले शादी के वक्त, व्हाट डू यू वांट, गिव मी योर मेन्यू कार्ड, व्हाट डू यू लाइक, बेटा बेटी, पहले बेटा पहले। हम इतनी फरमाइशी लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन वो मज़ा क्या है? आपको तो आखिरी दिन तक नहीं पता आपको क्या मिलना है। बात लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड से पूछे कि नहीं, गुना के नहीं, गुना सब आपको छोड़ दीजिए, सस्पेंस तो सस्पेंस होता है। आप कहते नहीं फिर वो शॉपिंग भी तो करनी है, तो बाद में कर लें, हैं? लेकिन सिर्फ ये, और क्या होगा अगर लड़की को आप, मिसाल आप लड़के को पिंक रॉम्पर पहना दें तो क्या उसकी सेक्स ख़राब हो जाएगी? और लड़की को आप ब्लू कलर के कपड़े पहना दें, आपकी अम्मा ने कौन सी आपकी शॉपिंग की थी पिंक ब्लू की? कुछ भी नहीं किया, कपड़े ही दे देते तो बड़ी बात है। इतनी शर्म आती थी, मुझे अपनी नानी की बात हमेशा याद आ जाती है, वो कहती इतनी शर्म आती थी औरतों को किसी को बताना नहीं, झबले सीने बैठ जाए, बच्चे आके पूछते थे ये किसके सी रहे हैं, गुड़िया के गुड्डे के, कहाँ है वो गुड़िया वो गुड्डा, फिर बाद में बच्चों को पहना दे, अच्छा जी इसके सिल रहे थे। आज तो बेबी को पता है मामा की बैली में क्या है, पहले तो आके घर के बच्चे को बताती है बेटा भाई आने वाला, बहन आने वाली है। रवायतें बदल गई और इससे बहुत सारे नुकसान हुए, तो कुछ बातें वक्त पे पता चले तो अच्छी लगती हैं। ये है आगे आप जो पीछे शुरू सूरत में कहा था वही की मुख्तलिफ किस्में, आप नोट भी कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम पे किस किस तरीके से वही आती थी। माँ का नली बशर नहीं युकल्लिमहुल्लाहु, किसी बशर का ये मुकाम नहीं कि अल्लाह इससे रूबरू बात करे, इसकी बात या तो वही यानी इशारे के तौर पर होती है या पर्दे के पीछे से, या फिर कोई पैगंबर फरिश्ता भेजता है, वो इसके हुक्म से जो कुछ चाहता है वही करता है, और जो वो बरतर और हकीम है। और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने अपने हुक्म से एक रूह आप की तरफ भेजी, इशारा है जिब्राइल की तरफ। आपको तो कुछ पता भी ना था कि किताब क्या होती है, 40 साल तक अल्लाह के नबी को नहीं पता था इस कलाम का क्या हुसन है, जब तक इकरा बिस्मि रब्बिका नहीं आई। चलिए आप और मैं अपने ऊपर लेते हैं, कुरान पढ़ने से पहले हमें पता था इसमें ये कुछ है? हम तो इसको बरकत की किताब और सवाब की किताब समझ कर आए थे, लेकिन आपको लग नहीं रहा ये आपके बेस्ट फ्रेंड बनती जा रही है? मान लीजिए ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है, जिसका साथ आपको सबसे प्यारा लगता है वो ये किताब है, और सादा कुरान सिंपल जिससे आप खुद पढ़ते हैं, वो तो आपको ऐसे लगेगा शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जब अकेले बैठे दुखी सुखी खुशी उसको पकड़ के बैठे, शर्त यह कि आप अपनी दोस्त की ज़ुबान समझते हो। और आपको ये भी ना पता था कि ईमान क्या होता है, क्या आपको पता लग गया ईमान क्या होता है? बाकी बाय द वे ईमान है क्या चीज़, होता है कि होती है, किस चिड़िया का नाम है ईमान? ईमान अमन है, ईमान खुशी है, ईमान सुकून है, ईमान ज़िंदगी का खुलासा है, ईमान आपको मुझे अल्लाह से जोड़ता है, ईमान बड़े बड़े फ़ैसले करवाता है, ईमान कुर्बानियाँ दिलाता है, ईमान हिजरतें करवाता है, ईमान ख्वाहिश नफ्स को अल्लाह की मर्ज़ी के आगे झुकाता है। ये ईमान की कीमत है। जैसे ये बिजली है ना, ये देखिए ये वायर पूरा हॉल इस वक्त किसकी वजह से जल रहा है? चल रहा है सब कुछ, लाइटें माइक स्पीकर स्क्रीन, ये किससे चल रहा है? बिजली। तो ईमान बिजली है जो आपको भगाता है। आप अपने ईमान की वोल्टेज चेक कर लें, किस स्पीड से भागती हूँ। बल्ब लगाते हैं ना 60 वाट 70 वाट 200 वाट, ये मरकरी बल्ब है, ये लेज़र बल्ब है, ये फुला है। आप बैठ के अकेले में चेक करें, आपको अंदर से जवाब आएगा, कोई दूसरा आपको फतवा ना दे। किसी को क्या पता आपके अंदर क्या है, मुझे क्या पता आपके अंदर क्या, और आपको क्या पता मैं क्या हूँ। ईमान आपकी फोर्स है, इसको बढ़ाएं। आप अपने बच्चों को कहते उठो नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। ईमान पैदा करें, अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ, और ईमान का सोर्स अल्लाह की ज़ात है, उस पे प्यार, उससे मोहब्बत, उसको समझना, सारे ही फैसले आसान हो जाते हैं एक दफ़ा ये ईमान आ जाए। मगर उस रूह को हमने एक रोशनी बना दिया जिससे हम राह दिखाते हैं अपने बंदों में से जिससे चाहते हैं, यकीनन तुम सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हो। यानी आप हिम्मत ना हारें, सारी दुनिया भी आपको गलत कह दे ना, लेकिन आप ये कॉन्फिडेंस रखें कि आप ठीक काम कर रहे हो इस अल्लाह के रास्ते की तरफ जो ज़मीन व आसमान की हर चीज़ का मालिक है। खबरदार रहो, सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रजू होते हैं। ये थी सूरत शुरा। सूरत के नाम के साथ थोड़ी सी बात करूंगी क्योंकि जहां आयतें आई थी वहां अंदाज दूसरा हुआ तो बात ना हुई। मशवरे की भी अहमियत इस सूरत से हमें पता चलती है। अमरहुम शूरा बैनहुम, अकेला बंदा कोई फैसले करता है ना तो वो उसके अपने होते हैं, एक तो खुद पसंदी की अलामत है। दूसरा ऐसा बंदा जो होता है ना वो दूसरे की खैर से फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो हमेशा ज़िंदगी में कामों को मशवरों से करें। इवन अपने घर में शौहर बीवी मशवरे से काम करें, बच्चों को भी आप मशवरे दें, हुक्म देने से ज़्यादा मशवरे दें, उनका इंटेलेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि वो अच्छे से अच्छा बात करें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इलल्लाही तसीरुल उमूर, आखिर में हमने पढ़ा, इस पर एक हदीस है बुखारी की 1413, फरमाया तुम में से कोई ऐसा ना होगा जिससे इसका रब कलाम ना करें, और इसके और इसके बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, नो इंटरप्रेटर, और कोई हिजाब नहीं होगा जो उसे छुपा कर रखे। बुखारी की रिवायत है 1413। बताइए ज़रा वो दिन कैसा होगा जब आप अपने रब को देख रहे होंगे और उससे बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ज़िंदगी में भी हम उसकी इस किताब और नमाज के ज़रिए से उससे बात करने के आदी हो जाएं।